104. नंदिनी ने अभिमन्यु की माँ और अन्य लोगों की ओर देखा, तभी उसकी नज़र समर्थ पर पड़ी, जो धीरे धीरे मासा और अर्पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मासा ने समर्थ की ओर देखते हुए कहा, समर्थ, कहाँ थे आप? अभिमन्यु कहाँ है? आप तो उसे लेने गए थे ना? समर्थ ने मासा की बात सुनी और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मासा, अभिमन्यु। इतना बोलकर समर्थ चुप हो गया। अर्पिता, जो समर्थ को भ्रम से देख रही थी, उसके पास आकर बोली, क्या बात है समर्थ, भाईसा कहाँ है? आप हमें बताइए, जब आप उनके कमरे में गए थे, क्या भाईसा कमरे में थे? समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो कमरे में था, लेकिन, इतना बोलते बोलते समर्थ रुक गया। मासा ने समर्थ को घूरते हुए कहा, लेकिन क्या समर्थ? समर्थ ने मासा के सामने खड़ी इप्सिता के माता पिता और उदय की ओर देखते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, अभिमन्यु ये शादी नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सबके चेहरे पर सदमे का भाव स्पष्ट था, जबकि अभिमन्यु के चाचा चाची के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। तभी अभिमन्यु की चाची धीरे से अपने पति के पास गईं और खुशी से बोली, क्या बात है, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि समर्थ हमें इतनी अच्छी खबर सुनाएगा। अभिमन्यु के चाचा ने वहां मौजूद सभी लोगों के भाव देखकर खुशी से कहा, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है, शादी से पहले ही दूल्हा फरार, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, हम तो कल के अखबार की सुर्खियां देखने का इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु के चाचा इतना ही बोल पाए थे कि उनकी पत्नी बोली, अरे आप भी कहाँ सुर्खियों के चक्कर में पड़े हैं, सामने तो लाइव ड्रामा चल रहा है, वो देखिए ना, और हमें तो ये देखकर ही खुशी हो रही है कि अभिमन्यु की शादी नहीं हो पाएगी। शादी नहीं होगी तो कुंवर सा ही रहेगा, राजा सा बनना तो उसके नसीब में ही नहीं है, हमारे लिए तो यही सबसे अच्छी बात है और हम यही चाहते थे। ये बात सुनकर अभिमन्यु के चाचा चाची आपस में बात करने लगे और खुश होने लगे। पीछे खड़े किसी ने उनकी बात सुन ली, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उदय समर्थ की बात सुनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इप्सिता के माता पिता ने समर्थ की बात सुनकर कहा, ये क्या मजाक है? मासा और अर्पिता भी हैरानी से समर्थ को घूर रही थीं। तभी समर्थ दो कदम पीछे हटा और हाथ जोड़ते हुए बोला, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, अभिमन्यु सच में ये शादी नहीं करना चाहता। समर्थ ने इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, मुझे बहुत माफ़ करना इप्सिता का भी। ये बात सुनते ही इप्सिता की धड़कनें रुक सी गईं, वो समर्थ की ओर देखने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मासा समर्थ के सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से बोली, समर्थ, आपकी इस बदतमीजी के लिए हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। समर्थ ने मासा की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात सच है, यहाँ कोई शादी नहीं होगी, अभिमन्यु सच में ये शादी नहीं करना चाहता। उदय समर्थ के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, समर्थ, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है, अभिमन्यु हमारी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अर्पिता समर्थ के पास आकर बोली, आप क्या बोल रहे हैं समर्थ, क्या भाई ने खुद आपको ये बात कही है? हमारे भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समर्थ ने कहा, हम भी अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर उसने इतना बड़ा फैसला लिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं? मासा ने समर्थ को घूरते हुए कहा, जब हमने आपको उसे लाने के लिए भेजा था तो फिर आप उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? इस समय अभिमन्यु कहाँ है और उसे ये शादी क्यों नहीं करनी? हमें उससे बात करनी है, उसे बुलाइए। समर्थ ने नजरें झुकाते हुए कहा, मासा, जब हम अभिमन्यु को लेने उसके कमरे में गए तो वो तैयार नहीं हुआ था, जब हमने उसे तैयार होने के लिए कहा तो उसने कहा कि उसे किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है, इसीलिए वो थोड़ी देर में आ जाएगा, इसीलिए हमने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद उसने हमें मैसेज किया कि वो ये शादी नहीं करेगा। उदय और इप्सिता के पिता अमरजीत जी समर्थ की बात सुनकर हैरान हो गए, क्या बात हो रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा इतना महत्वपूर्ण काम आ गया जो अभिमन्यु को अपनी शादी छोड़कर जाना पड़ गया, और फिर उसने अपने दोस्त को मैसेज करके ये बात बताई, कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? इप्सिता के पिता के गुस्से और उनकी बात सुनकर समर्थ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उनके सामने करते हुए कहा, हम क्यों ऐसा मजाक करेंगे, वो भी शादी को लेकर, और आपको यकीन नहीं है तो ये लीजिए हमारा मोबाइल फ़ोन, आप सब खुद ही देख लीजिए, इसमें अभिमन्यु के नंबर से ही ये मैसेज आया है, लेकिन इसके अलावा उसने और कुछ नहीं बोला हमसे और ना ही हमारे फ़ोन कॉल रिसीव कर रहा है। समर्थ ने अपने मोबाइल फ़ोन पर आया हुआ मैसेज सबको दिखाया। इप्सिता ने मोबाइल फ़ोन की ओर नहीं देखा, लेकिन बाकियों ने वो मैसेज देखा और सभी हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहां मौजूद मेहमान और अन्य लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। इप्सिता ये सब सुनकर उठ खड़ी हुई, उसे उठते देख नंदिनी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। इप्सिता की माँ ने कहा, इप्सिता, आप मंडप से क्यों उठ रही हैं, बैठिए, अभी हम बात कर रहे हैं ना, इस तरह से मंडप से उठना अशुभ होगा। इप्सिता ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, इससे ज्यादा अशुभ और क्या हो सकता है, और वैसे भी हम जानते हैं अब यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली।
अर्पिता भागते हुए इप्सिता के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं भाभी सा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम अपने भाई सा को जानते हैं, वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो शादी करने के लिए जरूर आएंगे। हमें तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि भाई सा ने शादी करने से मना कर दिया। हमारे भाई सा बहुत समझदार हैं, वो कभी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इप्सिता ने अर्पिता को घूरते हुए देखा और अपने चेहरे पर पड़ा घूंघट हटाते हुए बोली, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपके भाई साहब को। अभिमन्यु को ये शादी कभी नहीं करनी थी। वो सिर्फ अपनी मासा और जिम्मेदारियों के दबाव में आकर शादी कर रहा था और आखिरकार उसने शादी ना करने का फैसला ले ही लिया। बस हम ही बेवकूफ थे जो इस अनचाहे रिश्ते को स्वीकार करने का मन बना लिया था। ये सब बोलते हुए इप्सिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मंडप से नीचे उतर ही रही थी कि इप्सिता की माँ उसके पास आई और उसे रोकते हुए बोली, इप्सिता, हमारी बात तो सुनिए। इप्सिता ने गुस्से में अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए माँ, बहुत सुन चुके हम आपकी बात, अब हम आपकी एक नहीं सुनने वाले। मासा ने इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, इप्सिता रुकिए, हमारी बात सुनिए, हम अभी अभिमन्यु को बुलाएंगे और ये शादी जरूर होगी। इप्सिता ने मासा की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि शादी होगी? अब शादी में कुछ भी नहीं बचा है, जितना इंतजार करना था हमने उतना कर लिया, बस अब और नहीं। इतना बोलकर इप्सिता सीधे मासा के सामने आकर खड़ी हुई और अपने हाथों में पहने राजवंशी राजपरिवार के खानदानी कंगन उतारकर मासा के हाथों में पकड़ाते हुए बोली, ये रहे आपके खानदानी कंगन और साथ ही ये रही आपकी राजपरिवार की इज्जत, जो शायद हमारे लिए कभी बनी ही नहीं थी। इतना बोलकर इप्सिता ने अपने गले में पहना पुश्तैनी हार भी उतारकर मासा के हाथ पर रख दिया।
वो तेज आवाज में चिल्लाई, मम्मी पापा, अभी तक जो आपके मन में आया आप लोगों ने सिर्फ अपनी मर्जी से किया। हर बार आप लोगों ने राज परिवार की इज्जत के नाम पर हमसे वो सब करवाया जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। और देखिए, एक अच्छी संस्कारी आज्ञाकारी बेटी होने का क्या सिला मिला हमें। देखिए ना, हमें आज क्या सिला मिला है। इतने सारे मेहमानों के सामने हम यहाँ मंडप में दुल्हन बनकर अकेली खड़ी हूँ, बिना दूल्हे के। यही चाहते थे ना आप लोग, और यही हुआ। इससे तो बहुत बढ़ गई होगी सूर्यवंशी राज परिवार की इज्जत, और अब तो बहुत खुश होंगे ना आप लोग। ये सब बोलकर इप्सिता अपने माता पिता की ओर देखने लगी। उनके पीछे दो नौकर वरमाला की थाली लेकर खड़े थे। इप्सिता ने थाली में रखे हार की ओर देखा। उसने वरमाला की थाली पर जोर से मारा और सारा सामान जमीन पर पटकते हुए कहा, बस खत्म हो गया सब कुछ। इप्सिता गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाई, सब कुछ खत्म हो गया, कोई शादी नहीं होगी अब यहाँ। इप्सिता को इस तरह रोते देख नंदिनी भागती हुई उसके पास गई उसे संभालने के लिए और बोली, कृपया ऐसे मत रो, मैं तुझे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। इप्सिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की ओर भागने लगी। नंदिनी ने इप्सिता को भागते हुए देखा और आसपास खड़े लोगों की ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो इप्सिता को देख रही थी। इप्सिता रोते रोते सीढ़ियों की ओर भागी थी। भागते हुए उसका हाथ मंडप में रखे कलश पर लगा और वो कलश भी जमीन पर गिर गया। इप्सिता भाग रही थी तो उसके सिर की लाल चुनरी जमीन पर गिर गई। वो रोते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी और दो बार लड़खड़ा गई। उसे इस तरह लड़खड़ाते देख नंदिनी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागी। वहां खड़े मेहमान आपस में बातें करने लगे। वहां जो भी ड्रामा हुआ था उससे सबको समझ आ गया था कि दूल्हा नहीं आने वाला और वो शायद ये शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी माँ जबरदस्ती से ये शादी करवाना चाह रही थी। सभी लोग इस बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। उदय इप्सिता की ऐसी हालत देखकर अपने माता पिता और मासा की ओर देखते हुए गुस्से से भर गया। उसने अपने माता पिता के सामने खड़े होकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बस यही चाहते थे ना आप लोग कि आपकी बेटी आप लोगों की इज्जत के खातिर आपकी सारी बातें मान ले। आप लोगों ने हर चीज के लिए उससे झूठ बोला, हर पल आप लोगों ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और देखिए आज उसकी क्या हालत हो गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि हमें आप लोगों की डील के बारे में नहीं पता था? किस तरह आप लोगों ने इप्सिता का सौदा किया था? क्रमशः